नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत ने भूटान को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा के पहले दिन कल इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री आज थिम्पू में कालचक्र अभिषेक समारोह में भाग लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल थिम्पू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। उन्होंने परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों के समक्ष प्रार्थना की, जो अभी ताशी छोदजोंग जिन्हें ग्रैंड क्वेनरे हॉल में प्रतिष्ठित किया गया है। दोनों नेताओं ने 1020 मेगावाट की पुनात्सांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उनकी उपस्थिति में द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक का सर्वाधिक 66.91% का मतदान हुआ है। सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले गए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार के मतदाताओं ने स्वतंत्र भारत में एक इतिहास रचा है।
1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। 1951 से लेके अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार के इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है।
बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे उल्लेखनीय पहलू महिला मतदाताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक संख्या में मतदान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली विस्फोट की घटना में शामिल सभी लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली विस्फोट की घटना के हर दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने दिल्ली विस्फोट मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंप दी है। शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक नियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। अन्य सभी स्टेशनों पर सामान्य रूप से सेवाएं चालू रहेंगी। लाल किला भी कल तक दर्शकों के लिए बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैबरोन में बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इस दौरान व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति बोत्सवाना की संसद को संबोधित करेंगी। उनका भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज कनाडा के ओंटारियो में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। डॉ जयशंकर का ये दौरा कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद के निमंत्रण पर हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डॉ जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। ये दिवस हर वर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रेडियो से दिए गए ऐतिहासिक संबोधन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
प्रसारण के इतिहास में आज का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिवस है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1947 में दिल्ली स्थित प्रसारण भवन का पहला और एकमात्र दौरा किया था। गांधी जी ने दीपावली पर एक विशेष प्रसारण के माध्यम से पाकिस्तान से विस्थापित और कुरुक्षेत्र में ठहरे हुए शोकाकुल भारतीयों को संबोधित किया था। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक संबोधन मन की बात के 100वें एपिसोड के अवसर पर आकाशवाणी ने उसी स्टूडियो को बापू स्टूडियो के रूप में लोकार्पित किया। लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रसारकों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों और शिक्षाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। नितिका के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
स्क्वैश में मौजूदा महिला राष्ट्रीय चैंपियन अनाहत सिंह ने चाइना ओपन में जीत दर्ज करते हुए अगले दौर में जगह बनाई, जबकि वेलावन संथिल कुमार और अभय सिंह पुरुष वर्ग के पहले दौर में हार गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।